ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के मौजूदा प्रकोप में ये कई बार देखने में आया है कि स्कूल भी इसकी चपेट में आए हैं। दुनिया भर में कोरोना की नई लहर के चलते बच्चों के स्कूल बंद भी हुए हैं। क्या इसका मतलब ये है कि डेल्टा वेरिएंट बच्चों में ज़्यादा आसानी से फैल सकता है? और अगर ऐसा है तो बच्चों के लिए टीके उपलब्ध ना होने की स्थिति में बच्चों को सुरक्षित कैसे रखा जाए? आज जानेंगे इन्हीं सारे सवालों के जवाब। जब कोरोना वायरस पहली बार सामने आया तो एक बात जिसकी चिंता कम थी वो यह कि इससे बच्चों को गंभीर रूप से बीमार पड़ने या उनकी मृत्यु का खतरा बहुत कम था। पर अब जब हालिया प्रकोप में स्कूल के बच्चे भी प्रभावित हुए हैं, लोगों में डर बैठ गया है कि बच्चों में भी डेल्टा वेरिएंट के संक्रमण दर ऊंची है। तो क्या बच्चों में नजर आने वाले संक्रमण का यह अर्थ है कि इस बार बच्चे अधिक खतरे पर हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ PhD प्रोग्राम की निदेशक प्रोफेसर फियोना रसल कहती हैं, ऐसा नहीं है।
There is a study that's shown that the viral load, so the amount of virus that you've got, is about 1,000 times more for Delta. And so for any age group, for anyone that's got it, it will be more transmissible for anyone.
वहीं Doherty Institute की epidemiology निदेशक प्रोफेसर जॉडी मैकवर्नन का कहना है कि जहां ये चिंता की बात तो है कि कोरोना इस बार बच्चों पर भी असर डाल रहा है, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने का मुख्य डर 20 से 39 साल के लोगों के बीच ही है। उनका कहना है कि वैश्विक स्तर पर किन्हीं किन्हीं मामलों में बच्चों के संक्रमित होने की दर इसलिए भी ज्यादा रही है क्योंकि उन जगहों पर वयस्कों में टीकाकरण अभियान सफल रहा है, जिससे मोटे तौर पर संक्रमण की दर नीचे आई है।
Clearly in countries where there have been high levels of immunization uptake and where schools have been one of the more free social venues, we have seen many reports of increasing representation of children in the disease cases, and we would expect that within that context.
पर अगर बच्चे कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित हो भी जाएं, तो इसके दीर्घकालिक परिणाम क्या हैं? विशेषज्ञों का कहना है कि उनके पास इतना डेटा उपलब्ध नहीं है कि वे बता सकें कि बच्चों में लॉन्ग कोविड जैसे परिणाम किस तरह दिखेंगे। पर दूसरे देशों में देखे गए प्रभावों से बीमारी की गंभीरता का अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है। प्रोफेसर फियोना रसल कहती हैं कि हालांकि इस समय डेल्टा वेरिएंट का प्रकोप अधिक है, तो भी बच्चों का इसकी वजह से गंभीर रूप से बीमार पड़ना या अस्पताल भर्ती होना या मृत्यु होना बहुत ही असामान्य है। ये खतरा जो पहले ही बहुत कम है, और भी कम हो जाता है अगर बच्चे को पहले से कोई स्वास्थ्य समस्याएं ना हो।
Looking at the data from the UK and the US, there has been an increase in hospitalizations in all ages, including children and young people. But the rates of hospitalization are still 3 to 4 times higher in the older age groups compared to the younger age group.
तो माता पिता को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
Fever and sore throat seem to be still dominant symptoms for everyone with COVID, but I do think that children are probably more likely to have a runny nose and some headaches from some of the sort of epidemiological studies that are coming out from overseas as well.
ऐसा कहती हैं डॉक्टर आशा बावन, जो पर्थ चिल्ड्रन हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक इन्फेक्शन डिजीजेस की प्रमुख हैं और टेलीथॉन किड्स इंस्टीट्यूट में वैक्सीन एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस की भी प्रमुख हैं। वे कहती हैं कि बच्चों को संक्रमण से दूर रखना और बच्चे के पूर्ण विकास में सामंजस्य बैठाना बहुत जरूरी है।
We know that sort of online learning is nowhere near as efficient for the youngest children, and for those children who are living in situations of disadvantage, where school is a safety measure, as well as they're able to actually access all of the resources that they need to learn. Closing of schools is a big risk to their overall educational attainment because every school day matters. And so it's trying to balance that sort of need for face-to-face learning and need for schools to be opened with the attempts to control the transmission of the virus and to minimize population movement.
Professor Fiona Russell is baat se sehmat hai.
There's been such a demand for mental health services for children and teenagers that there aren't enough psychologists to go around and services, and so there aren't appointments. There's nothing available for this year. for these children, because there's been such a surge in mental health problems in this younger population. And so distressed families instead are turning up in the emergency departments because they can't get appointments. And so this is, you know, we're having a silent mental health epidemic.
Dr. Asha Bhavan kehti hai ki bhavishya mein स्कूलों को बंद होने से रोकने का एक तरीका एक ऐसी रोकथाम योजना भी हो सकती है जिसके कई पहलू हों। ये समुदाय में संक्रमण के दर पर निर्भर होते हुए एक ट्रैफिक लाइट सिस्टम की तरह काम कर सकती है।
When there's a moderate level, then the mitigation processes that are really important are minimizing the number of adults on campus, minimizing the amount of, I guess, contact between people, so that physical distancing, using masks for the ages that it's appropriate, which is mostly high school students. Hand hygiene and hand washing remain critical aspects, as well as everyone sort of symptom assessing and staying home if they have any symptoms that could be a possible association with a respiratory illness. Those things are key strategies. And then I think building on top of that is thinking about the way the school classrooms are ventilated and whether there's you know, different ways of keeping windows open or changing those filtration strategies.
Dr. Bhavan ka kehna hai ki school ke teacher aur dusre staff ko prathamikta par tika milna hi chahiye. Professor Fiona Russell is baat se sehmat hain.
We have to have a plan. We can't just, you know, just keep closing schools forever. This virus is going to be around forever. It won't go away, even though we, you know, we hope to get to 70-80% of vaccination coverage. You know, hopefully we will, but even with that, the virus will still circulate. And so we have to prepare our schools now.
और बच्चों के टीकाकरण का क्या? अब तक TGA यानी थेरेप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन ने 12 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए केवल फाइजर के टीके को ही मान्यता दी है और वो भी केवल उन बच्चों के लिए जिन्हें पहले से ही कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं जैसे दमे की शिकायत या मिर्गी या जिनके प्रतिरोधक शक्ति कम हो या वे इंडिजिनस परिपेक्ष से हों या दूर दराज के इलाकों में रहते हों उनसे भी छोटे बच्चों के लिए प्रोफेसर फियोना रसल कहती हैं
We don't have a vaccine yet available for children under 12. It's still undergoing clinical trials. We have to know what the risks and benefits are, so that'll be a long way off.
ऑस्ट्रेलिया के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी प्रोफेसर पॉल केली का कहना है कि अभी सिर्फ उन बच्चों को जो कि कोरोना वायरस के खतरे पर हैं, को टीका देने की योजना भविष्य में बदली भी जा सकती है.
As more evidence accrues from countries that have gone down a different pathway, for example, in the US, where they are doing a blanket approach to all children. In the coming months, they will, of course, continue to look at that information and make assessments as is necessary.
पर प्रोफेसर जॉडी मैकवर्नन कहती है कि फिलहाल जो तथ्य सामने हैं उनसे ऐसा नहीं लगता कि 12 से 15 साल के बच्चों को ऑस्ट्रेलिया में टीका देना संक्रमण के फैलाव को रोकने का असरदार तरीका है वे कहती हैं कि बच्चे माता पिता के टीके लगवाने से ज़्यादा बेहतर सुरक्षित रहेंगे और खासकर वे माता पिता जो 20 से 39 साल के आयु वर्ग में आते हैं क्योंकि कोरोना इसी आयु वर्ग के लोगों के जरिए सबसे अधिक फैलता है
Are very important, and so a strategy that protects them as well as elders in the population and the middle and the working age people, we believe to be the best strategy at this time.
Professor Fiona Russell kehti hai ki Israel mein hua Pfizer ka ek shodh aur UK mein hua AstraZeneca ka ek shodh is baat ka samarthan karte hain.
We have two highly effective vaccines at the moment, so in terms of protecting our children and what we can do right now. Is for adults and parents to get vaccinated with either of these vaccines, whichever they're eligible.
Coronavirus संबंधी अधिक जानकारी और सहायता के लिए जाएं sbs.com.au/coronavirus पर. SBS News से एमी हॉल की इस खबर को SBS हिंदी से आपके लिए पेश किया है प्रशाली जैन ने.